अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसके गले में से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो डरते हुए कहती है, कौन बोल रहा है? क्या कह रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो?
ब्लैक मर्सिडीज BM A1 9456। जानते हो ना ये गाड़ी किसकी है? जैसे ही अरुणिमा ने ये गाड़ी का नंबर सुना, उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी ये कार किसकी है। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। तभी अरुणिमा ने सामने से हंसने की आवाज़ सुनी। सामने जो भी था वो खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है, जल्दी करो अरुणिमा, तुम्हारा पति मरने वाला है। बचा सकती हो तो बचा लो इसे। हिल माउंटेन के हाईवे पर पहुंच जाओ, जहां तुम्हारा पति जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। और इसके बाद कॉल कट जाती है। अरुणिमा का दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। उसके हाथ पैर एकदम से सुन हो गए थे और उसने सोचा ही नहीं कि ये कॉल कोई ट्रैप भी हो सकता है। आस्तिक की जान को खतरा है, ये सोचकर वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसने सोच समझने की शक्ति ही खो दी। वो तेजी से दौड़ते हुए कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर कार की दूसरी चाबी लाती है। वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी कि उसने चाबी उठाई और तेजी से भागते हुए वो घर के बाहर आ जाती है। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोलकर तेजी से वो गाड़ी की तरफ भाग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड गार्डन में ही थे, लेकिन जब उन्होंने अरुणिमा को देखा तो वो सतर्क हो गए।
मैडम मैडम, आप कहाँ जा रही हैं?
मैडम, बॉस के ऑर्डर हैं, आप कहीं नहीं जा सकती मैडम। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे आ रहे थे और सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अरुणिमा ने किसी की नहीं सुनी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बेतहाशा रोए जा रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। तुरंत गियर लगाकर वो गाड़ी को गेट की तरफ ले जाती है। आस्तिक की सारी गाड़ियों में सेंसर लगा हुआ था, जो गेट के पास जाने के बाद गेट अपने आप ओपन हो जाता है। गेट अपने आप खुल गया और अरुणिमा तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। अरुणिमा को ऐसे निकलते देख बॉडीगार्ड भी सतर्क हो जाते हैं। वो जल्दी से भागते हुए दूसरी गाड़ी में जाते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो अरुणिमा का पीछा करने लगते हैं। अरुणिमा बैक से उस गाड़ी को देखती है जिसमें बॉडीगार्ड थे। हालांकि वो थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन अरुणिमा को इस बात की फिक्र नहीं थी, उसे बस आस्तिक की फिक्र थी। अरुणिमा तेजी से गाड़ी आगे भगा रही थी। उसका पूरा ध्यान या तो आस्तिक की तरफ था या फिर पीछे आ रही सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी की तरफ था। उसने सड़क पर ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से वो हाईवे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक ट्रक बाईं तरफ से तेजी से आया और सीधे उसकी कार को टक्कर मार देता है। अरुणिमा की चीख निकल जाती है। उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी। अचानक से उसका पेट स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया और गाड़ी का दरवाजा टूट गया, जिसकी वजह से वो नुकीले पत्थरों पर पेट के बल गिर गई। वो दर्द से चिल्ला उठी और इससे पहले वो कुछ समझ पाती वो बेहोश हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम। आस्तिक ने सूर्या का गिरेबान पकड़ा हुआ था और उसे दीवार से लगाए हुए था। कमरे में सिर्फ चार ही लोग मौजूद थे, आस्तिक, सूर्या, सूर्या का बाप जिसे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा था, और नीरज जो दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। जैसे आस्तिक जो कर रहा है इस बात का उसे पहले से ही पता था। आस्तिक ने सूर्या के गिरेबान को पकड़कर उसे दीवार से लगाया और लगभग उसका गला घोटते हुए कहा, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती है क्या? पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया ये सोचकर कि शायद तुम ना समझ हो और इसीलिए मुझसे पंगे लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। और अगर मैं अब तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम फिर से कुछ ऐसा करोगे कि जिससे मासूम लोगों की जान जाएगी। मिस्टर रायचंद, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी कंपनी में आकर, मेरे ऑफिस में आकर मेरे बेटे के साथ इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। छोड़िए सूर्या को, वरना मैं आपके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर दिलीप मल्होत्रा, सूर्या के पिता ने गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहा। लेकिन आस्तिक ने मल्होत्रा को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर बदतमीजी का सबक अपने बेटे को सिखाया होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता मिस्टर मल्होत्रा। इतना कहते हुए आस्तिक ने गुस्से में सूर्या को उस कांच के टेबल पर दे मारा और सूर्या उस टेबल को तोड़ता हुआ नीचे फर्श पर जा लगता है। कांच के टुकड़े उसके पीठ पर गड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आस्तिक का ही मजाक उड़ा रहा है। उसे हंसता देख आस्तिक का खून और खौल जाता है। वो गुस्से में सूर्या की तरफ कदम बढ़ाता है और उसका गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहता है, तुम्हें समझाया था ना, मैं वार्निंग दी थी कि मुझसे पंगे मत लो। लगता है पिछली बार तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, पर कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा कभी आस्तिक रायचंद से उलझने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मेरी कंपनी में आग तुमने ही लगवाई थी, ये बात मैं जान चुका हूँ। तुमने मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उस कंपनी में जो सामान तैयार होता था उसकी वजह से मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने वहां पर मरे हुए लोगों को देखा है। उनके परिवार वालों से नजरें नहीं मिल पा रहा था मैं, किसी अपने के जाने का इल्जाम वो मुझ पर दे रहे थे। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है सूर्या मल्होत्रा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना कहते ही आस्तिक ने उसके पेट पर जोर से लात मारी। सूर्या के मुंह से खून निकल गया। आस्तिक गुस्से में पागल हो गया। उसने सूर्या को इतनी जोर से लात मारी थी कि सूर्या के मुंह से चीख निकल गई और वो नीचे जमीन पर गिर गया था। सूर्या की ऐसी हालत देखकर आस्तिक में पागलपन दिख रहा था। सूर्या की हालत लगभग अधमरी हो चुकी थी। सूर्या के पिता मिस्टर मल्होत्रा अपने फोन से पुलिस को कॉल कर रहे थे, लेकिन उनका फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। आखिर में गुस्से में आकर मिस्टर मल्होत्रा ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। वो आस्तिक के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर आस्तिक को दूर धकेलते हैं। वो गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहते हैं, हिम्मत ही कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ आस्तिक रायचंद, एक करोड़पति बाप के बेटे और खुद एक बड़े बिजनेसमैन हो। लेकिन इसके अलावा भी तुम एक माफिया हो, ये भी मैं जानता हूँ। पर तुम जो कोई भी हो, तुम्हें मेरे बेटे को चोट पहुँचाने का कोई हक नहीं है। बेटा? हाँ बेटा, जब बेटे पर बात आती है तो बाप बौखला ही जाता है। मेरी कंपनी भी मेरे लिए मेरे बच्चे जैसी ही है, जिसे मैं अपने बलबूते पर खड़ा किया था, ना कि अपने बाप की दौलत पर। और तुम्हारे इस बेटे ने उसे राख में मिला दिया। सोचो तुम्हारे बेटे को जरा सा हाथ क्या लगा दिया, तुम तिल मिला उठे। मेरी कंपनी को राख बनता देख मेरी क्या हालत हुई होगी। और हाँ, तुम्हारे बेटे की जो ये हालत हुई है ना, इसकी वजह सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, बल्कि इस कमीने ने मेरी बीवी को किडनैप करने की गलती की थी। मिस्टर मल्होत्रा एकदम हैरान हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा, बकवास कर रहे हो तुम, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है, तुम पागल हो चुके हो। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम एक सनकी इंसान हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह।
सूर्य अधमरी हालत में खड़ा था, लेकिन उसने अपने पिता को देखते हुए कहा, पापा प्लीज आप इन सब में मत पड़िए, ये आदमी पागल है, ये आपको नुकसान पहुँचा देगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता हूँ पापा, आप मेरे लिए भगवान हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मुझे इस पागल आदमी से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, इसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है और मुझे जानना भी नहीं है कि ये सब क्यों कर रहा है। बस आप इन सब के बीच में मत पड़िए। उसे ऐसा देखकर आस्तिक हंसने लगता है। वो अपना एक हाथ अपने कमर पर रखता है और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए जोर से हंस रहा था। उसने हंसते हुए सूर्य को देखकर कहा, क्या एक्टिंग करता है, अपरिचित मूवी के बाद मुझे तेरी एक्टिंग ऑस्कर विनिंग लग रही है। नीरज के चेहरे पर भी एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई थी। सच में उसका बॉस भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं था। आस्तिक ने अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगा ली। सिगरेट का एक कश लगाते हुए उसने धुएं को हवा में उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर वो हंसने वाले एक्सप्रेशन अभी भी थे, जिसे देखकर उन दोनों बाप बेटे की हालत खराब हो रही थी। आस्तिक ने सिगरेट का एक और लंबा कश लिया और उसे हवा में उड़ाते हुए वो सूर्य के पास आता है। उसने धीरे से सूर्य के कानों के पास झुककर बोला, मुझे पता है तू इस खेल में सिर्फ एक प्यादा है, इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है, तो खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आस्तिक रायचंद इंसान की आंखें देखकर उसकी नीयत बता देता है। अब तक खेल तेरी तरफ से खेला जा रहा था, मैं इस खेल को खेलने में इंटरेस्टेड भी नहीं था, लेकिन अब अगर तू और तेरा उस चाहने वाला चाहता है कि मैं इस खेल में शामिल हूँ तो ठीक है, चल एक काम कर, अपने उस चाहने वाले को मैसेज भेज, उसे बता कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है, वो खिलाड़ी चालाक है और अपनी चालाकी से वो तुझसे वो करवा रहा है जो वो खुद करना चाहता है। इतने बड़े बिजनेस के साथ साथ माफिया को भी संभालता हूँ, पागल नहीं हूँ, तेरा इतना बड़ा कारोबार है, परिवार है, ये सब छोड़कर पिछले एक साल से तू मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, इसकी वजह मामूली तो नहीं हो सकती है। माफिया कितना खतरनाक काम है ये बात सभी जानते हैं और लोग इससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन तू बार बार इस काम में शामिल होना चाहता है और इसके लिए तूने सीधे मुझसे टक्कर ली है। ये सब एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है और एक दिन में नहीं किया जा सकता है।